너무나 하나 더 와야 جزاكم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة الفرقان کی شناختی عباد الرحمن والی آیات کی تفسیر چل رہی ہے تو اس میں ہم پیج نمبر 507 تک پڑھ چکے تھے جو آخری آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں توبہ کا ذکر تھا ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی حالت میں گناہ کے کام کیے وہ کیسے توبہ کریں اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں گناہ کے کام کیے وہ کیسے توبہ کریں دونوں کی الگ الگ توبہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو کفر کی حالت میں ہیں تو ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کریں اس کو کہتے ہیں ایمان لے کر کے آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اور وہ سب کچھ سچا ہے ٹھیک ہے اس کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یعنی قلب سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ کہلاتا ہے ایمان لے کر کے آنا تو کافر کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ ایمان لے کر کے نہ آئے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر کافر برے کام کرنے چھوڑ دے اور نیکی کے کام کرنے شروع کر دے ٹھیک ہے نا شراب پینا چھوڑ دے زنا کرنا چھوڑ دے قتل کرنا چھوڑ دے جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جوا کھیلنا چھوڑ دے اور ذبیحہ کھانا شروع کر دے ہے نا جانوروں کو جو ہے وہ غلط طریقوں سے قتل کر کے کھانے کی بجائے ذبح کر کے قتل کر کے کھانا شروع کر دے ذبح کر کے کھانا شروع کر دے ٹھیک ہے تو اس کی توبہ یعنی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے جتنے ہی نیک عمل کر رہا ہے کچھ قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلے ایمان نہیں لے کر کے آئے گا ٹھیک ہے ایمان لینے کے بعد لانے کے بعد اس کے یہ سارے عمل قبول ہوں گے ورنہ اس کے یہ عمل قبول نہیں ہوں گے یعنی یہ اس کی توبہ نہیں کہلائے گی کہ بھئی اس نے برے کام چھوڑ دیے اور ان کے اوپر بڑا نادم ہوا کہ میں نے بڑے زنا کیے میں نے بڑے قتل کیے میں نے بڑے جوئے کھیلے میں نے بڑے لوگوں کو تکلیف دی بڑا افسوس کر رہا ہے وہ اس کے اوپر اور اب اس نے جو ہے نا وہ سارے کام چھوڑ دیے اور نیکی کے کام کرنے شروع کر دیے جس کو لوگ اچھا کام کہتے ہیں نیکی کا کام کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر کے آیا نہیں کچھ نہیں کوئی اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ ابھی بھی کافر ہے ابھی بھی کافر ہے ٹھیک ہے نا تو ایمان کے خانے میں ابھی بھی اس کے پاس زیرو ہے ٹھیک ہے تو اعمال ملٹی پلائی بائی ایمان ایسے جو ہے وہ نام اعمال کے اندر نیک عمل لکھنے شروع ہوتے ہیں اعمال ملٹی پلائی بائی ایمان اگر ایمان کے اندر زیرو ہے تو زیرو ملٹی پلائی بائی جتنے بھی اعمال ہوں وہ سارے کے سارے زیرو ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم و شان کے اندر اعلان فرما دیا کسی چیز کا ہم وزن نہیں کریں گے وی ول ناٹ وے اینی تھنگ وی ول ناٹ گیو ویٹیج ٹو اینی تھنگ ٹھیک ہے
तो उसकी तौबा का तरीका यह है कि पहले वो ईमान लेकर के आए और उसके बाद फिर वो नेक अमाल करने शुरू कर दे, उसकी तौबा हो गई। अब उसके जो है ना वो नामे अमाल के अंदर नेकियां लिखी जानी शुरू होती जाएंगी और फिर जो है वो उसके इवन गुनाह भी जो है वो नेकियों में तब्दील किए जा सकते हैं, जैसे कि तफसील पढ़ चुके हैं। जबकि एक ईमान ईमान वाला जो पहले से मुसलमान है लेकिन उसने बहुत गुनाहों वाली जिंदगी गुजारी है, तो उस शख्स के लिए अल्लाह ताला ने तौबा का तरीका क्या रखा है कि वो अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो और आइंदा ना गुनाह करने का इरादा कर ले अपने दिल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद फिर कुछ ऐसे अमल करे कि जिससे कि उसकी तौबा के बारे में सीरियसनेस का इजहार होता हो, सीरियसनेस का इजहार होता हो, ठीक है। तो ये जो नेक अमल उसने किए हैं तो इनके करने से इसकी तौबा जो है वो मुकम्मल हो गई और अब जो है ना अल्लाह ताला के कुर्ब में इसके लिए जो एक प्लॉट असाइन किया हुआ अल्लाह ताला ने मताबन, मताबन से क्या मुराद, अल्लाह ताला की तरफ एक जगह मौजूद है हर ईमान वाले के लिए, ठीक है ना। वो जगह जो है अल्लाह ताला ने हर एक के लिए रिजर्व करके रखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये किसको अलॉट होती है, जो कि तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेता है और नेक अमाल शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसको फिर ये जगह अलॉट भी हो जाती है, ये प्लॉट अलॉट भी हो जाता है, ठीक है। तो वही मतलब हुआ यतूबु इलल्लाही मताबन, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तौबा के बारे में? वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी अहादीस और न जाने कितने बयानात वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। तो तौबा जो है ना ये यानी ये एसेंशियल है, इससे बात शुरू होती है, ठीक है। ये जो नेकी की जिंदगी है, जन्नत की तरफ बढ़ने वाले अमाल है ना, ये सब स्टार्ट जो है ना ये तौबा से होते हैं। तौबा के बगैर जो है ना ये जर्नी स्टार्ट नहीं होती है सर जन्नत की तरफ जाने वाली, ठीक है। तो तौबा करना जो है वो लाजमी है, तौबा करके फिर नेक अमल करेंगे तो फायदा होगा, तौबा किए बगैर नेक अमल करेंगे ना तो उन नेक अमलों का कोई एतबार नहीं होता है, ठीक है ना। वो फिर है नहीं है कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना। कबूल हो रहे हैं कबूल नहीं हो रहे हैं कुछ पता नहीं होता उनका। हाँ ठीक है, हो भी सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं कबूल होंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। भाई मुसलमान है वो, मुसलमान बगैर तौबा किए हुए नेक अमल कर रहा होता है तो कबूल हो भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मुसलमान तो है ना, ईमान तो है ना उसके पास, तो कबूल हो भी सकते हैं लेकिन कबूल नहीं भी हो सकते, ठीक है। लेकिन तौबा करने के बाद जो है ना फिर कबूलियत जो होती है वो फिर गारंटीड हो जाती है, क्योंकि तौबा की कबूलियत जो है ना फिर वो नेक अमाल की कबूलियत की गारंटी बन जाती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम तौबा के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करें, क्योंकि तौबा जो है इसमें हमारे लिए उम्मीद भी है, होप भी है, मायूसी का सद्देबाब है तौबा के अंदर, ठीक है ना। अगर तौबा नहीं करी ना तो फिर मायूसी का दरवाजा बंद नहीं होता, शैतान जो है ना फिर वो इंसान को मायूस करता है कि तुम्हारे नेक अमल जो है वो तो में क्या जन्नत में पहुंचाएंगे, तुम तो इतने बुरे हो, तुम तो नेक नहीं बन सकते हो, तुम्हें तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे नेकी नेकी करने का। तो मायूसी का दरवाजा खुला रहता है जब तक आप तौबा नहीं करते, तौबा करने के बाद ना मायूसी का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तौबा के बाद उस पर कायम रहने के लिए कौन सा अमल किया जाए? आप पिछली क्लास में नहीं थे गालिबन, तो खैर थे या नहीं थे, लेकिन पिछली क्लास के अंदर ये बात हुई थी कि अपनी सोहबत चेंज की जाए, ठीक है, और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर ली जाए, ठीक है ना। चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल नेक बंदे की सोहबत इख्तियार की जाए, जिसको कहते हैं इस्लाही ताल्लुक बनाना किसी शेख के साथ, ठीक है ना। या अगर कोई एक नेक बंदा ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसके साथ आप बाकायदा शेख वाला इस्लाही ताल्लुक बना लें, तो कम अज कम नेकों की सोहबत यानी एक ग्रुप ऑफ नेक पीपल, उनकी सोहबत को इख्तियार कर लिया जाए, ठीक है ना। इसकी मिसाल जो है तबलीगी जमात वाली है। तबलीगी जमात जो है ना ये शेख ऑफर नहीं करती, ठीक है ना। तबलीगी जमात का ये काम नहीं है कि आपको जो है वो किसी शेख के से इंट्रोड्यूस करवा दें कि भाई आप इन शेख से बैत कर लें। नहीं, तबलीगी जमात जो है ना उसका काम क्या है या उसका काम का तरीका क्या है कि आपको एक माहौल प्रोवाइड करती है ठीक है, कि जो जमात के अंदर निकले हुए साथी होते हैं, 5 हैं 10 हैं जितने भी हैं, ठीक है ना, तो ये लोग जो है ना सारे के सारे जो हैं ये अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगाने के लिए घर से निकले होते हैं, मस्जिद के अंदर आकर के रहते हैं, साथ मिलकर के अमाल करते हैं, एक तरतीब होती है इसके अंदर, इसमें कोई एक शेख नहीं होता। हाँ अमीर होता है, वो अमीर तो छोटे लेवल का अमीर होता है ना, बस उस जमात का अमीर होता है, कोई शेख नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना। तो तबलीगी जमात की जो सोबत है ना, ये भी सालिहीन की सोबत है, ठीक है ना। तो या तो इंडिविजुअली किसी शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बना ले, या कलेक्टिवली कोई इस किस्म की कोई जमात हो, तबलीगी जमात इज वन ऑफ देम, और इसके अलावा कोई और इस किस्म का जैसे खत्म नबूवत वाला काम है, ठीक है ना। तो खत्म नबूवत वाले जो साथी मिल करके खास तौर पर खत्म नबूवत का काम करें, तो वो भी सालिहीन की एक जमात है, ठीक है ना, उसका हिस्सा बन जाए। या कोई जो है वो इकामत दीन की कोई जमात है जो कि मुल्क के अंदर दुनिया के अंदर दीन के कायम रहने की जद्दोजहद कर रही है, ठीक है ना, उलमा की सरपरस्ती में, ऑफ कोर्स उलमा की गाइडेंस के साथ, ऐसे नहीं नौजवान उठ करके जज्बाती नारे मारने वाली बात नहीं कर रहा, उस वाली जमात की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि उलमा की सरपरस्ती में कोई एक जमात है जो कि इकामत दीन का काम कर रही है, तो उस वाली जमात का हिस्सा बन जाए, ये भी सालिहीन की सोबत इख्तियार करना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना वो ऑप्शंस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमेशा अवेलेबल करके रखे हुए होते हैं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ठीक है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, के सादिकीन की मईयत इख्तियार कर लो, ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। और अल्लाह ताला का हुक्म जो है ना जो कुरान के अंदर होता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हुक्म मौजूद हो लेकिन उस हुक्म के ऊपर अमल करना मुमकिन ना हो। हुक्म तो मौजूद है लेकिन अमल करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर सालिहीन खत्म हो गए, सॉरी सॉरी सादिकीन खत्म हो गए, है ना। अब कैसे जी अल्लाह के हुक्म पे अमल करें, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह का हुक्म रहेगा, सादिकीन रहेंगे, सादिकीन रहेंगे, अल्लाह का हुक्म रहेगा, जब दुनिया से सादिकीन खत्म हो जाएंगे अल्लाह का हुक्म भी खत्म हो जाएगा, कुरान उठा लिया जाएगा, फिर दुनिया में कुरान बाकी नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा, है ना, अलामात कयामत में से एक कुरान उठा लिया जाएगा, राइट। तो वो उसी वक्त होगा जब ये सादिकीन भी दुनिया से उठा लिए जाएंगे, लेकिन जब तक ये हुक्म मौजूद है, कुरान मौजूद है, सादिकीन मौजूद रहेंगे, हमारा काम ये है कि हम उनको तलाश करें, ठीक है। घर बैठे तो आपको सब्जी नहीं मिलती, उसके लिए भी मार्केट जाना पड़ता है ना, अंडे नहीं मिलते उसके लिए भी बाजार जाना पड़ता है ना, तो सादिकीन कहाँ से मिल जाएंगे, राइट, बाहर निकलना पड़ेगा ना, तलाश करना पड़ेगा ना, कम से कम ऑनलाइन ही बाहर निकलें, राइट, ऑनलाइन ही जरा सर्च करें कि जी कहाँ कहाँ जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं, कहाँ कैसे उनके साथ जो है वो हम वक्त गुजार सकते हैं, कैसे उनकी सोबत इख्तियार कर सकते हैं। अब आज के दौर के अंदर तो अल्लाह ताला ने यानी और भी ज्यादा हमारे लिए ऑप्शन जो है वो आसान कर दिए हैं ना, ठीक है। अब जो है वो 10वीं सिफत अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों के बारे में कि ये जो मेरे मकबूल बंदे होते हैं, मेरे खास इबाद होते हैं, तो इनकी एक और सिफत ये होती है, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूरा, यानी ये लोग झूठ और बातिल की मजलिसों में शरीक नहीं होते, ठीक है, यानी ऐसी पार्टीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते कि जहां पर झूठ चल रहे हो या कोई किसी किस्म का बातिल काम हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें फरमाते हैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन, क्या मतलब झूठ और बातिल से, सबसे बड़ा झूठ और बातिल तो शिर्क और कुफर है, ठीक है, यानी किसी ऐसी मजलिस में ऐसी जगह पर शरीक नहीं होते जहां पर मुशरिकाना काम हो रहे हैं, चाहे वो कोई मजार हो जिसके ऊपर शिरकी शिरकियाना अफाल हो रहे हो, राइट, सजदे हो रहे हों, या उनसे जो है वो उल्टी सीधी किस्म की जो भी होती हैं हरकतें मजारों के ऊपर, ठीक है ना, ना उस किस्म की मजलिसों में शामिल होते हैं, ना जो है वो अपने दफ्तर के जो है वो गैर मुस्लिम लोग हैं उनकी कोई रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, तो अब ये भी जो है ना वो अपनी मार्केटिंग के लिए और अपने जो है वो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए और अपने सेल्स पिच को जरा ज्यादा और बढ़ाने के लिए ये भी जाकर के उसमें शरीक हो गए कि हाँ भाई जरा लोगों के साथ वो भी बड़ा अच्छा फील करेंगे कि देखो ये तो हमारी रिलीजियस गैदरिंग में भी आया, राइट, तो अब जो है ना वो उनसे हमें ज्यादा अच्छा बिजनेस मिलेगा, ये कस्टमर साहब है, कस्टमर की तो फिर सब कुछ ही, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, है ना, वो है ना सेल्स वालों का नारा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट के अंदर फिर कहीं ये ना आ जाए कि कस्टमर्स रिलीजन इज ऑल्सो राइट, है ना। तो अब कस्टमर को खुश करने के लिए उसके रिलीजन की भी तारीफ करनी शुरू कर दी, उसके त्योहारों के अंदर भी शामिल होना शुरू कर दिया ताकि बिजनेस मिले। हाँ शायद आपको इधर का बिजनेस मिल जाए, लेकिन फिर मरने के बाद हमेशा हमेशा का खसारा, हमेशा हमेशा का लॉस, ठीक है। क्योंकि अगर उनके दीन की जरा सा भी कह दिया ना कि दिस इज राइट, तो फिर आपके लिए जन्नत इज रॉन्ग, फिर जन्नत नहीं मिलने वाली उसके बाद, ठीक है। तो शिर्क कुफर वाली किसी किस्म की भी मजलिस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्त बना लेते हैं, खुसूसन इंडिया के अंदर तो जो कि हिंदुओं की मेजोरिटी होती है, वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू दोस्त बना लेते हैं और फिर उनके साथ जो है वो उठना बैठना और उनकी महफिलों में शरीक होना और उनके राइट। तो ये सब जो है ना, ये यशदून जूर के अंदर आ जाता है, शिर्क और बातिल, ठीक है। तो सबसे बड़ा झूठ और बातिल तो शिर्क और कुफर है। इसके बाद आम झूठ और गुनाह के काम, ये कम दर्जे के की बुराई है कि शिर्क और कुफर नहीं है, लेकिन जो गुनाह के काम होते हैं, जैसे कि फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं राइट, या जो है वो कोई ऐसा वक्त जाया करने वाली चीज है जिसके अंदर गुनाह भी शामिल है, ठीक है ना। जैसे कि औरतों के बारे में गप्पे मारने के लिए, लतीफे सुनाने के लिए, फोहश किस्म की बातें करने के लिए, और जो भी ये जो नशे वगैरह की महफिलें होती हैं, ठीक है ना, जिसमें के बजाहिर जो है वो हलाल चीजें होती हैं, यानी हलाल सिगरेट होता है, लेकिन फिर उसके अंदर वो नशे वाला सिगरेट भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह की जो मजलिसें होती हैं, जो कि आम तौर पर अनफॉर्चुनेटली जो दुनियादार तबका होता है, तो वो इस किस्म की मजारिस जो होती है वो बहुत कॉमन होती है, ठीक है। दूसरों की गीबतों करने के लिए, गीबतें करने के लिए खाम खा, जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई आपको यानी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गीबतें करने के लिए जमा हो जाते हैं हम तो। ये तो बहुत आम है ना कि हमारे जो खसूसन पाकिस्तानी लोग हैं, तो उनकी मजलिसों में दो काम होते हैं, या तो वो सियासतदानों की बुराई, वो आजकल जरा दूसरा चक्कर चल गया है, लेकिन पहले सिर्फ यही होता था, सियासतदानों की बुराई, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है पाकिस्तानी मजलिसों के अंदर, क्रिकेट, ठीक है ना, वो क्रिकेट के ऊपर बातचीत होती है। तो ये दो जो है ना, ये प्राइमरी डिस्कशन टॉपिक्स हैं हमारी मजालिस के, ठीक है। लेकिन जो फिर तौबा कर लेते हैं और फिर वो सालिहीन की सोबत अख्तियार कर लेते हैं, उनकी मजालिस से ये चीजें खत्म हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास बैठ करके फिर सियासतदानों की बुराई अल्हम्दुलिल्लाह सुनने की तकलीफ नहीं करनी पड़ती, और ना जो है वो क्रिकेट के ऊपर जो है वो उल्टी सीधी बकवास सुनने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मतलब आयत का ये है कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे ऐसी मजलिसों में शिरकत से भी गुरेज करते हैं, ठीक है, यानी ऐसी मजलिसों में शिरकत करने से भी गुरेज करते हैं, ठीक है ना। बाकी काम भी करते हैं, और ये भी बड़ा अहम काम है, यानी जब तक आप इन मजलिसों को नहीं छोड़ेंगे, तो उस वक्त तक आप अल्लाह के मकबूल बंदों में शुमार नहीं हो सकते। आज किसी वालिदा से बात हो रही थी उनके बच्चों के बारे में, ठीक है, कि जी बच्चे जो है ना वो कुछ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और कुछ जो है ना वो उनके मिजाज बस जरा दुनियादार टाइप का बन गया है, ठीक है। तो इस हाजिज ने उनको यही समझाया कि देखें, आप तो दीन चाहती हैं ना, ठीक है, माँ अगर दीन चाहती हो ना, ठीक है, तो फिर जो है ना दीन यानी औलाद के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। अगर माँ दीनदार, अगर माँ के प्रायोरिटीज सेट हो, तो फिर औलाद को कोई दीन से नहीं रोक सकता, सिवाय औलाद को कोई दीन से नहीं रोक सकता, यानी बाप नहीं रोक सकता फिर दीन से, ठीक है। दादा और नाना और मामू और चाचू, ये सब दीन से नहीं रोक सकते बच्चे को, ठीक है, अगर माँ दीनदार हो, सिवाय सिवाय किसके, आप बता दें। अगर माँ दीनदार हो राइट, और संजीदा हो दीन के बारे में, तो फिर कौन रोक सकता है बच्चे को, फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। अब ये रुकावट बन सकते हैं रास्ते में, और कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती, ठीक है ना। باپ بے شک دین سے کتنا دور ہو, ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے نا, وہ کرے گا جو کچھ, اپنی جان مارے گا بچوں کو دین سے روکنے کے لیے, لیکن اگر ماں سنجیدہ ہو دین کے بارے میں, بچوں کا کام بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور ہمارے مشائخ تو اس کے اوپر ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں. تاریخ کے اندر تاتاری جو ہے وہ بغداد کو جب انہوں نے تباہ کر دیا تو مسلمان لڑکیوں کو لے گئے اپنے ساتھ, زندہ لے گئے اور ان کے ساتھ زنا کیا انہوں نے, ان کو اپنی باندی بنایا, اپنے گھروں کے اندر رکھ لیا. صحیح ہے, اس حالت میں وہ مسلمان لڑکیاں تھیں, تاتاریوں کے گھروں کے اندر رہتی تھیں اور ان کے بچوں کی, حرام بچوں کی مائیں بنی, پھر وہ حرام بچوں کی مائیں بنی. لیکن چونکہ ان کے دل میں ایمان تھا, ان بچیوں کے دل میں ایمان تھا, لڑکیوں کے دل میں ایمان تھا, انہوں نے ان بچوں کی, حرام بچوں کی ایسی تربیت کری کہ یہ بڑے ہو کر کے مسلمان فوج کے سپاہی بنے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ گھر میں تاتاری ہے, غیر مسلم ہے, کافر ہے, مسلمانوں کا قاتل موجود ہے گھر کے اندر, لیکن ماں سیٹ تھی, بچے سیٹ ہو گئے. وہاں پر اس زمانے میں اسکول کالج یونیورسٹیز ہوتے نہیں تھے, ہے نا. آج مصیبت کیا ہے کہ ماں ہوتی تو بڑی دیندار ہے لیکن وہی کالج تو بھیج دیتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے نا, اس سے وہ نہیں روک پاتے, انٹرنیٹ جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی دوستیاں بنا لیتے ہیں دنیا جہاں میں, جو ہے وہ فاسق سے, فاجر سے, دنیا دار سے, دنیا پرست سے اپنی دوستیاں بنا لیتے ہیں. یہ دوست رکاوٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ دوست نہیں ہٹیں گے نا, یہ دوستوں سے بچہ نہیں کٹے گا, اس وقت تک ماں بھی اس کو دیندار نہیں بنا سکتی. یہ دوست اتنا مضبوط چیز ہوتی ہے, رائٹ. جب یہ تو سورہ فرقان کے اندر ہے نا, وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا کہیں گے, کاش کہ میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دوست جو ہے نا, جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ یہ سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے, بلکہ یہ تو شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے, رائٹ. اتنا برا ہوتا ہے دوست, تو قیامت کے اندر بھی جا کر کے افسوس کرے گا, یہ میں جہنم میں جا رہا ہوں, کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا. تو یہ دوست کہاں سے بنتے ہیں؟ گیدرنگ سے بنتے ہیں, مجالس سے بنتے ہیں, چاہے وہ فزیکل مجالس ہوں, چاہے وہ ورچوئل مجالس ہوں. فزیکل مجالس تو سمجھتے ہیں, ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ گپے مارنا, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا. ورچوئل مجالس کیا ہوتی ہیں؟ انٹرنیٹ چیٹ رومز, انسٹاگرام تو, اسنیپ چیٹ تو, فیس بک تو, فلانا تو, ڈھمکانا, یہ ساری ورچوئل مجالس ہیں, رائٹ. تو عباد الرحمان بننا ہے نا تو ان ورچوئل مجالس کو چھوڑنا پڑے گا, ان کے ساتھ نہیں بن سکتے. یہ بات کان کھول کے سن لیں, ان کے ساتھ آپ نہیں بن سکتے اللہ کے مقبول بندے. ٹھیک ہے نا, ان کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیٹ دس بی ویری کلیئر. تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں. حضرت ابن عباس حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں یہی ہوتے تھے خالی. ٹھیک ہے نا, اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا نا, اب تو سوشل میڈیا کے اوپر مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. وہ آج وہ موبائل کا نیٹورک لگانے کے لیے آئے نا, تو ابھی اسی نیٹورک کے اوپر کلاس ہو رہی ہے, تو ذرا آپ لوگوں کو آواز اچھی آ رہی ہے. تو وہ جو تھا نا, وہ ان کا جو ڈبا شبا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ای لائف. تو میری بیٹی نے پوچھا یہ ای لائف سے کیا مطلب ہے, تو میں نے کہا الیکٹرانک لائف. تو اس نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ای سے الیکٹرانک ہوتا ہے, تو کیا مطلب ای لائف کا؟ میں نے کہا دس از لائف, اب ناؤ یو ڈونٹ نیڈ اے فزیکل لائف, ایوری تھنگ از الیکٹرانک, یور لائف از کمپلیٹلی الیکٹرانک. ٹھیک ہے, اب تو باقی تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ, باقی آپ کی فزیکل لائف جو ہے وہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کی نظر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب باقی آپ کی لائف کیا رہ گئی ہے؟ ای لائف رہ گئی. ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے نا, دیز ورچوئل مجالس, دیز ورچوئل محفلیں, دس از ازور, دس از زور. ٹھیک ہے نا, تو ان کو ترک نہیں کریں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو اب پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا نا گانے بجانے کی محفلوں کے لیے, جب سے ٹی وی کو لے کر کے آئے ہیں اپنے گھر کے اندر, تو دنیا جہاں کی خرافات جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر. پہلے تو وہ ہیرا منڈی جاتے تھے تو ریڈ زون جاتے تھے, تو فلانا زون, مکہ مکرمہ بھی ایک ریڈ زون ہوتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا, جہاں پر کہ اس قسم کی محفلیں مجلسیں ہوتی تھیں. اب تو ہر گھر جو ہے وہ ریڈ زون, رائٹ. किसी के एक लाउंज के अंदर रेड जोन बनाया हुआ है, तो किसी ने अपने बेडरूम्स के अंदर रेड जोन बनाया हुआ है, किसी ने एक बनाए हुए, किसी ने चार बनाए हुए, हर कमरा जो है वो रेड जोन बना हुआ है, हीरा मंडी बना हुआ है भाई। तो कैसे मुसलमान है भाई, क्या चाहते हैं हम? इस दुनिया की जिंदगी को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समझ लिया है। यहाँ पे जो टीवी देख करके मजे कर रहे हैं तो बस यही करते रहेंगे सर, हमेशा यही रहेगा आपके साथ। मरना नहीं है क्या? मौत नहीं आनी है आपको, दूसरों को आनी है खाली, हमें नहीं आनी मौत। तो कब निकालेंगे इस टीवी को अपनी जिंदगी से? मरने के बाद निकालेंगे, उसके बाद कुछ नहीं निकाल सकेंगे। फिर तो हमारे अंदर से निकाला जाएगा जो भी निकाला जाएगा, ठीक है। घर से निकालने का वक्त यही है, अभी है घर से निकालने का वक्त, अभी कर लें, ठीक है। टीवी अगर ऑफ रखी हो घर में, सुअर रखा हुआ है और जो है ना उसको उसको वो क्या कहते हैं, सुअर को जो है ना वो क्लोरोफॉर्म सुंघा करके ना उसको सुला दिया, तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई सुअर जो है ना वो सो रहा है, उस सुअर सो रहा है ना, अभी सो रहा है, थोड़ी देर में जागेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से टीवी घर में रखा हुआ है और ऑफ रखा हुआ ना, तो ये जागेगा, और इसको जगाने के लिए जो है ना, ये शयातीन कम नहीं है, शयातीन बहुत हैं टीवी को जगाने के लिए, ठीक है ना। वो आपसे जगवाएंगे इस टीवी को, ठीक है ना। तो अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये शैतान तो बड़ा कमजोर है, ये मुझसे टीवी नहीं खुलवा सकता, ठीक है। इसको बड़े तरीके आते हैं, इसने बड़े लोगों से काम करवाए, ठीक है। तो इस वजह से ना, ला तक़रबु ज़िना, टीवी क्या है? ज़िना का मेला है पूरा का पूरा, है ना, आंखों का ज़िना, कानों का ज़िना। तो अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमाते हैं, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, और हमने उसको उठा के अपने घर में रखा हुआ है, ज़िना के अड्डे को अपने घर में रखा हुआ है, और अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं इसके करीब मत जाओ। अब घर से बाहर रहेंगे आप जा करके, हैं, घर से बाहर जा करके रहेंगे कि भाई घर के अंदर तो ज़िना का अड्डा मौजूद है, तो मैं अब बाहर रहूं घर के। तो बेवकूफी की बातें होती हैं ना, बस ये दीन में ही चलती हैं, बस हमारी दुनिया में ऐसी बेवकूफियां नहीं चलती। दुनिया में तो हम बहुत सियाणे, बहुत सियाणे हैं हम दुनिया के मामले, पंजाबी अंदाज में बात करो, बहुत सियाणे हैं। वहां पे हमारी सारी की सारी अकल जो है ना वो काम करना शुरू हो जाती है एकदम से, और दीन में जो है ना वो हम 1 + 1 = 2 नहीं कर पाते, है ना। इतना हमारी अकल जो होती है वो मार दी जाती है हमारे गुनाहों की वजह से, ठीक है। तो गाने बजाने की महफिलें हैं, ठीक है। अम्र बिन कैस ने फरमाया कि बेहयाई और नाच रंग की महफिलें मुराद है, सब कुछ ये इस टीवी के अंदर। जोहरी इमाम मालिक ने फरमाया, अच्छा वो आप लोग अगर रमजान मुबारक के अंदर जो क्लासें हो रही थी तो उसमें मौजूद थे, तो वहीं वहां पर भी पिछली आयात के अंदर भी टीवी के ऊपर बात चली थी, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो खवातीन खुसूसन दो चार थी, वो किसी ना किसी तरीके से ना टीवी रखने की इजाजत लेना चाह रही, तो अब उनको और कुछ समझ में नहीं आया ना, तो कहने लगी कि जी वो नाते सुनने के लिए टीवी रखना है, नाते सुनने के लिए टीवी रख सकते हैं। तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग जाकर के सुने जो उनके साथ फिर हुआ था, नाते सुनने के लिए टीवी। लेकिन अब तो मोबाइल फोन टीवी से ज्यादा खौफनाक है, जो कि मजबूरी भी है। तो मोबाइल फोन की मजबूरी जो है वो ये बहाना तो नहीं है ना कि ये टीवी घर के अंदर होगा। भाई टीवी जो है ना ये एक घर के अंदर जो है ना ये एक इज्तिमाई जिना का अड्डा है, ठीक है ना। मोबाइल फोन जो है बेशक वो बहुत मुश्किल है, और जाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल फोन को ही बतौर टीवी के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई मोबाइल फोन की चले आप कह रहे हैं ना कि मजबूरी भी है, ठीक है ना, मजबूरी है, आप खुद ही कह रहे हैं ना मोबाइल फोन मजबूरी है, सही है। दफ्तर का काम करने के लिए आपको मोबाइल फोन चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए आपको मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है ना, सही है ना। टीवी के लिए कौन सी मजबूरी? तो आप एक मजबूरी की वजह से अगर एक पॉसिबल गुनाह का जरिया आपके पास है, तो दूसरा गुनाह का जरिया जिसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है वो क्यों रखा हुआ है आपने? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर इट, राइट। भाई मोबाइल फोन के लिए आप चलो अल्लाह ताला के सामने जवाब देंगे कि जी मजबूरी थी मेरी है अल्लाह, तो अल्लाह ताला कह कह सकते हैं कि हाँ भाई वाकई में तुम्हें जानता था, मैं देख रहा था कि तुम्हारी मजबूरी थी, ठीक है ना। हाउ विल यू डिफाइन, हाउ विल यू जस्टिफाई टेलीविजन? क्या एक एक चीज की जस्टिफिकेशन नहीं पेश करनी पड़ेगी अल्लाह के सामने जब गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे होंगे? तो टीवी को कैसे कभी वो बड़ा है आपके ऑफिस के अंदर, क्या कहते हैं उसको, अम्मी बरते थे, बहुत बहुत बड़े टाइम चार्ट होता है ना वो, क्या क्या नाम था इसका, टाइम चार्ट जो बनाते हैं, जिसके अंदर आपने अपने आवर्स जो है ना वो अपने मैनेजर साहब को बताने होते हैं कि मैंने ये आवर किधर लगाया, है ना। 9 to 5 आपकी जॉब थी, टाइम शीट, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो टाइम शीट भरनी होती है ना, ये आवर किधर लगाया, वो आवर किधर लगाया, ये आवर किधर लगाया, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, राइट। तो टाइम शीट भरनी पड़ती है, अल्लाह ताला के सामने टाइम शीट भी भरनी पड़ेगी, और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया था, जो कुछ मौजूद था, उन सब का भी हिसाब देना होगा, उम्र का हिसाब देना होगा, जवानी का हिसाब देना होगा, माल का हिसाब देना होगा, कैसे कमाया, कैसे खर्च किया। तो ये टीवी जो है ये कहां से आया था, फरिश्ते लेकर के आए थे कोई, है अपने कमाए हुए माल से टीवी खरीदा था ना, हिसाब नहीं देना होगा टीवी के लिए, हिसाब नहीं देना होगा टीवी के लिए, है। तो क्या कहेंगे, अल्लाह मेरी मजबूरी थी, टीवी रखना मेरी मजबूरी थी, अपने शौक से लेकर के आए, ठीक है। बात समझ में आई आपके सवाल का, आपको जवाब। तो भाई एक एक चीज को जस्टिफाई करना है ना, मोबाइल फोन को जस्टिफाई करने के लिए अगर आपके पास जस्टिफिकेशंस हैं, तो टीवी के लिए जस्टिफिकेशंस हैं आपके पास ऐसी वाली, ठीक है ना। वो तो अलग बात है कि भाई मोबाइल फोन की भी कितनी जस्टिफिकेशन है, उसके अंदर भी कितना गुना जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है, गुना तो नहीं जस्टिफाई किया जा सकता मोबाइल फोन के अंदर भी, ठीक है। मोबाइल से कैसे हटाया जाए फेसबुक और इंस्टाग्राम को, इनसे तो आंखों का जिना भी होता है। अब मैं आपको अनइंस्टॉल करना भी सिखाऊं, है वो तो मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हूँ ही नहीं, ना फेसबुक पर हूँ ना इंस्टाग्राम पे। और अगर टीवी पर खाली न्यूज़ सुनी जाए, तो भाई न्यूज़ अगर सुनना है तो उसके लिए टीवी की क्या ज़रूरत है, है उसके लिए रेडियो, रेडियो काफ़ी नहीं है आपके लिए। तो न्यूज़ आपको देखनी है, असल टीवी पर न्यूज़ देखनी है, और न्यूज़ में तो फिर वो आंटियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। वो जरा आंटियाँ बहुत बोल रही थी ना उस वाली क्लास के अंदर, टीवी टीवी की नाते सुनने के लिए, टीवी नाते सुनने के लिए। मैंने कहा भाई वो टीवी के ऊपर जो आंटियाँ आती हैं ना, बड़ी हसीन और जमील किस्म की, तो आपके जब हस्बैंड जो है ना वो आपके नातों के शौक में जो टीवी आपने रखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपके जब हस्बैंड उन आंटियों को देखते हैं ना, तो फिर आप उनको याद नहीं रहती, ठीक है ना। ये मर्दों की सीक्रेट्स बता रहा हूँ आपको, आंटियों से मैंने कहा, ठीक है ना, फिर आप उनको याद नहीं आती, फिर ये आंटियां उनके आसाब पे सवार होती हैं, ठीक है ना। फिर आपके साथ तो उनका एक जबरदस्ती का मामला चल रहा है, क्योंकि आप से जान छुड़ाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, वरना उनका बस चले और ये आपको साइड पे लगाएं और उन आंटियों को लेकर के आए घर के अंदर, ठीक है ना। तो आप तो नातों के शौक के अंदर टीवी से पीछा नहीं छुड़ाना चाह रही थी, और उधर से जो है ना वो आपकी सौकने, पता नहीं कितनी सौकने जो है वो आपके शौहर के दिलो दिमाग के ऊपर सवार पहले ही हो चुकी है, इस टीवी की बरकत की वजह से, टीवी की नातों की वजह से, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई आ भी जाएगी ना, तो फिर आप मजे कीजिएगा, उसके बाद नाते सुनती रहेगा बाकी सारी जिंदगी, ठीक है। क्या अनइंस्टॉल करके भी अगर दिल चाहे दोबारा खोलने का, तो भाई तौबा करें, और तौबा के बाद फिर वो वाले नेक अमाल की जो इतनी सारी बात हो चुकी है ना, तो वो करेंगे, तो फिर आपका दिल जो है वो नहीं चाहेगा उसके बाद, ठीक है ना। दिल को जरा नेकियों के अंदर लगाएंगे, गुनाहों की नजासत जो है ना वो आपके जरा दिल में पैदा होगी, उसका एहसास पैदा होगा ना, तो फिर उसके बाद ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोबारा इंस्टॉल करने की का दिल नहीं चाहेगा ना। इन चीजों को जरा समझने की, सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो फिर वो सब कुछ हो जाएगा, सही है। जो नेक लोग होते हैं तो फिर वो कोई थोड़ी वो बार बार इसी हर वक्त इसी से फाइट करते रहते हैं कि जी फेसबुक इंस्टॉल करूँ कि नहीं करूँ, राइट। वो गुजर चुके होते हैं इस मरहले से, ठीक है ना। उनका फिर दिल नहीं चाहता नजिस चीजों को देखने का, आपका पखाने को देखने को, देखने को दिल चाहता है, कभी दिल चाहे आपका पखाने को देखने का, है आता है आपको दिल दिल में कभी, यार दोबारा से मैं जरा जाकर के देखूँ तो मैं क्या करके आया हूँ बाथरूम के अंदर, नहीं आता ना। फौरन फ्लश करते हैं, ठिकाने लगाते हैं उसको, ताकि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उसकी बदबू भी ना रहे। गुनाह जो है ना ये पहाने से ज्यादा बुरी चीज है, ज्यादा नजिस चीज है। जरा अल्लाह वाला बनकर तो देखे ना पहले, ठीक है ना, फिर आपको गुनाह से उससे ज्यादा नफरत होगी, जितनी अभी आपको इस नजासत से नफरत है ना, उससे ज्यादा नफरत आपको गुनाह से हो जाएगी। जरा कदम तो बढ़ाए, आगे बढ़े तो जरा बात माने तो सही, कुछ करके तो दिखाएं, ठीक है ना। ये रास्ते जो है ना अल्लाह ताला ने खोले हुए हैं, ठीक है ना, जब तक ईमान वाले इस दुनिया में रहेंगे ये रास्ते खुले रहेंगे, ठीक है ना, हमारा काम है कि इसके ऊपर कदम बढ़ाए, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। मकरूहात शरईया, मकरूहात तबईया बन जाएंगे, जो चीजें शरीयत के अंदर मकरूह हैं यानी गुनाह, वो आपकी तबीयत के अंदर भी मकरूह बन जाएंगी, फिर जो है ना वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल बेचारे वो अर्तुगरल के ऐसे पीछे पड़े हुए हैं, आज एक वो हेडलाइन मैंने देखी तो अजीब, क्या वो न्यूज भी मैंने खैर पढ़ी, हेडलाइन देखी, क्योंकि मेरा तो ये टॉपिक ही है ना बात करने का, कि वो जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो चूंकि अर्तुगरल जो है ना वो उन्होंने बड़े साहब ने जो है वो कौम को नसीहत कर दी है कि भाई अर्तुगरल देखो, ठीक है ना, तो अब और बहाना मिल गया उनके सारे फैंस को कि जी अर्तुगरल देखना है, मदरसे के बच्चे भी देख रहे हैं अर्तुगरल, ठीक है ना, तो वो बच्चों ने कुछ गिरा दिया बहुत सारा। अच्छा तो वो क्या हेडलाइन थी कि अर्तुगरल के अंदर जो मोमिना है ना, मोमिना कोई है पता नहीं कौन, तो तुर्किश खातून है कोई जो कि बहुत ही नेक मुसलमान औरत का रोल प्ले कर रही है, तो उनकी जो है ना गंदी गंदी तस्वीरें आ गई हैं कुछ, है ना, बेहयाई की तस्वीरें आ गई हैं, तो अब जो है ना पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत उनको लान तान कर रहे हैं कि तुम देखो देखो जरा अर्तुगरल के अंदर तुम कितनी अच्छी हो और तुमने ये क्या किया है, तुम बहुत उसको लान तान हो रही है ना। तो यानी ये जो है ना ये अकल इस लेवल तक जो होती है ना वो मत मार दी जाती इस लेवल तक, राइट। छोटे बच्चे से तो चलो ये तवक्को कर सकते हैं कि वो टीवी ड्रामे के अंदर जो देख रहा था ना वो उसी को हकीकत समझ रहा था, है ना, लेकिन अच्छे खासे उम्र के लोग 15 साल से ऊपर अच्छी खासी उम्र हो जाती है, अब वो भी जो है वो टीवी ड्रामे के अंदर जो एक्ट्रेस को देख रहे हैं ना तो समझ रहे हैं कि ये हकीकत में भी ऐसी होनी चाहिए, यानी उसी को हकीकत समझ रहे होते हैं। अर्तुगरल के अंदर जो तमाशे दिखा रहे हैं, जो स्टोरियां बनाई हुई हैं, क्या उसके अंदर हकीकत है, कोई है कोई थोड़ी ये चीजें हिस्ट्री के अंदर, राइट, ये सारी तफसीलात किसको पता क्या हुआ था उसमें, कोई तफसील उसके अंदर नहीं है हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें, तो बस देखने वाले जो है ना वो गोया के एक नशे के अंदर है ना, नशा होता है कि हाँ जी मुसलमान ओहो कैसे अच्छे मुसलमान और ये वो, और फिर जो है ना उन्हीं रोल्स को जो है वो हकीकत समझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप चूंकि गुनाहों के रास्ते से हट ही नहीं रहे हैं, आपने टीवी बंद ही नहीं करी है, तो इसी वजह से ना आपके दिमाग के अंदर इस किस्म की खराफात चलती रहेंगी, और फिर आप जो है वो उनकी एक्ट्रेसेस जो है वो समझेंगी कि वो भी जो है ना साहबियात की तरह की जिंदगी गुजारती होगी, भाई वो तो पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं है, और अगर है भी तो वो तो फासिक और फाजर किस्म की जिंदगी गुजारने वाली है, उससे किस किस्म की आपने तवक्कोआत करके रखी हुई है, ठीक है। सम वेबसाइट्स न्यूज ब्लॉग्स ई कॉमर्स साइट्स पे वेरी बैड एड्स, हाउ टू अवॉइड इट, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ठीक है ना, अपने निगाहों की हिफाजत करें। यूट्यूब पर इस्लामी बयान सुनते हैं लेकिन एड्स एक्सेट्रा भी आते हैं, तो क्या यूट्यूब से साइडलाइन हो जाए? हाँ, तो आपको किसने कहा YouTube के ऊपर बयान सुनने के लिए, आप अपनी मर्जी से सुनते हैं ना, तो ऑडियो बयान तलाश करें, हर जगह तो नहीं वीडियोज होती हैं, ठीक है ना, अगर वहां पर आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको अपनी निगाहों पर काबू नहीं है अभी, तो अभी आप यू कैन नॉट हैंडल YouTube, इट मींस यू आर नॉट एट दैट लेवल कि आप जो है वो अपनी निगाहों की हिफाजत कर सकें, तो आपको YouTube को बंद करना पड़ेगा। जो रिकॉर्डेड बयान हैं, ऑडियो बयान हैं, आज भी मौजूद हैं, ठीक है ना, तो उनका कोई इंतजाम करें सुनने के लिए, ठीक है ना। और वैसे भी ये जो शॉपिंग अराउंड फॉर बयानात जो है ना, ठीक है ना, कभी इधर सुन लिया कभी उधर सुन लिया, शॉप अराउंड जिस तरह से विंडो शॉपिंग कर रहे हो, कभी भाई आप जाते हैं किसी किसी मार्केट स्ट्रीट के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारी दुकानें, सही है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदनी थी अपने लिए जो है ना, वो कोई आपको 3-piece suit खरीदना था, ठीक है, तो अब जो है ना आप जो है वो कभी इस दुकान में देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे सूट्स लगे हुए हैं, फिर उसके बाद इस दुकान में देख रहे हैं यहाँ पे भी बड़े जबरदस्त सूट लगे हुए हैं, फिर उस दुकान में देख रहे हैं अच्छा यहाँ भी बड़ा जबरदस्त सूट लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग, है ना। तो विंडो शॉपिंग करते रहेंगे आप, 2 घंटे भी वहां पे विंडो शॉपिंग करते रहें, आपको सूट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। भाई सूट खरीदने के लिए तो आपको एक दुकान के अंदर जाना पड़ेगा ना बिलाखिर, ठीक है, आप दूसरी दुकानों में चेक करते हुए जा रहे हो, अभी आपका इरादा ये है कि मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन चेक करने से सूट तो ही आता ना, ठीक है ना, सूट तो उसी वक्त आपके पास आएगा ना जब आप किसी दुकान के अंदर एंटर होंगे, वहां पर उस सूट को देखेंगे, उसको ट्राई ऑन करेंगे और उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे, फिर उसको लेकर के अपने घर आ जाएंगे। विंडो शॉपिंग से तो सूट नहीं खरीदा जाएगा ना आपका। बिल्कुल इसी तरीके से दीन जो है ना ये अमल करने की चीज है, ये सिर्फ जो है ना ये विंडो शॉपिंग करने की चीज नहीं है, इधर सुन लिया फिर उधर सुन लिया फिर इनको सुन लिया फिर उनको सुन लिया, ये विंडो शॉपिंग कहलाती है। तो यूट्यूब के ऊपर जो हम इधर उधर ब्राउज अराउंड करके इधर से उधर से सुनते रहते हैं ना, इससे जो है ना वो दीन हमारे अंदर नहीं आ सकता। हाँ, आपके ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके अंदर दाखिल हो रही है, इंफॉर्मेशन दाखिल हो रही है, ठीक है, इल्म दाखिल नहीं हो रहा, इल्म अलग चीज होती है, इंफॉर्मेशन अलग चीज होती है, ठीक है ना। और फिर इल्म जो है ना वो भी फायदेमंद तब होता है जब उसके ऊपर अमल किया जाए। तो भाई दीन जो है ना ये एक अलग चीज का नाम है, ये जो जो काफिरों ने हमारे साथ ना बड़ा जबरदस्त किस्म का खेल खेला हुआ है, उन्होंने हमें ना अब ऐसे लगा दिया है इस सोशल मीडिया के ऊपर दीन वालों को, कि अब ना उनको कुछ और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़े लोग जो है ना परेशान होते हैं पड़ोस मुल्क के अंदर कि जी वो पाकिस्तान के नंबर से अगर मैसेज आएगा ना तो हमें पकड़ लेंगे और हमें जो है ना वो ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं कहता हूँ भाई उनको कोई जरूरत नहीं है आपको पकड़ने की, आप पहले ही जो है ना बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग टू बिगिन विद, उनको कोई खौफ नहीं है आपसे। हाँ, उनको कुछ रिश्वत विश्वत अगर कभी किसी का आपकी बहुत ही बदबख्ती आ जाए तो आपके इलाके का पुलिस वाला जो है ना वो रिश्वत हासिल करने के लिए आपको कुछ तंग जरूर कर सकता है कि भाई तुमने पाकिस्तानी से बात करी थी तो चलो जो है मैं पकड़ता हूँ, तुम मुझे रिश्वत दो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा कोई उनको खौफ नहीं है आपसे, कोई 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 उनको आपसे कोई मकसद नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते उनका, बिकॉज ऑल ऑफ दिस यूट्यूब एंड सोशल मीडिया हैज ऑलरेडी बॉक्ड यू डाउन Completely, आपको जो है ना इन्होंने गर्क करके रख दिया है। अब आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के काबिल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारी हकीकत है, ठीक है ना। तो इससे बाहर निकलने के लिए ना तौबा करनी पड़ेगी, इन चीजों से निकलना पड़ेगा। ये दीन नहीं है सोशल मीडिया वाला दीन, यूट्यूब वाला दीन, ये दीन नहीं होता भाई, ये विंडो शॉपिंग है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है। ऐसे नहीं दीन आता जिंदगी के अंदर। अच्छा, तो ये जो लोग होते हैं ना इनके बारे में फरमाया, जोहरी इमाम मालिक ने फरमाया कि शराब पीने पिलाने की मजलिसें मुराद हैं, और हकीकत यह है कि इन अकवाल में कोई इख्तलाफ नहीं, ये सारी मुराद है, ये सारी ही मजलिसें मजलिसे जूर की मिसदाक हैं, ठीक है। अल्लाह के नेक बंदों को ऐसी महफिलों से ही से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लग़व बातिल का बिलकसद देखना भी उसकी शिरकत के हुक्म में है। बिलकसद यानी जिसको कहते हैं इल्म और इरादे के साथ आपने हराम चीज की तरफ देखा ना, ठीक है ना, तो ये देखा है खाली, दिस इज कॉल्ड बीइंग पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यानी मैं तो फिल्में देखता हूँ, मैं कोई फिल्म बनाता कोई थोड़ी हूँ, मैं कोई फिल्म में काम भी थोड़ी कर रहा हूँ। ओ भाई, फिल्म का देखना जो है ना यही फिल्म के अंदर शिरकत है, आप तो ऑडियंस में से हैं, आप तो ऑडियंस में से हैं, तो आप ऑडियंस के जरिए से उसमें शामिल होते हैं, दिस इज हाउ यू पार्टिसिपेट इन अ मूवी, ठीक है। अच्छा, बाज हजरात मुफस्सरीन ने ला यशहदून ज़ूर में यशहदून को शहादत बमाने गवाही से लिया है, ठीक है ना। यशहदून का जो लफ्ज है ये शहादा भी इसकी रूट वर्ड बनता है, और शहादत का मतलब होता है सारे उठाएंगे, ठीक है। तो शहादत का मानी होता है गवाही देना, और मानी आयत ये करार दिए कि ये लोग झूठी गवाही नहीं देते, ठीक है। झूठी गवाही का गुनाह कबीरा और वबाल अजीम होना कुरान और सुन्नत में मारूफ और मशहूर है। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को अकबरुल कबायर फरमाया, ठीक है ना। यश यानी कौल ज़ूर, ये ज़ादा तालिबीन जो हमारी हदीस की किताब है उसमें भी ये हदीस मौजूद है कि कौल अज़्ज़ूर जो है ना, ये अकबर, यानी शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी और कौल अज़्ज़ूर, ये अकबर और कबाइल के अंदर ने शामिल फरमाया। तो ये दोनों यानी तफसीरें जो है वो हमारे अकाबरीन से मनकूल हैं। तो अगर अगर किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि हो सकता है पहली वाली तफसीर सही तफसीर ना हो, दूसरी वाली तफसीर सही तफसीर हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शराब और झूठ और गुनाह की मजलिसें जो है ना, वो हम अटेंड करके भी अल्लाह के मकबूल बंदे बन सकते हैं, है ना। अगर पहली वाली तफसीर सही वाली तफसीर नहीं है, एज्यूमिंगली अगर सही तफसीर नहीं है बल्कि दूसरी वाली तफसीर यहाँ पर सही तफसीर है कि यहाँ पर तो झूठी गवाही की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि हम चाहे जैसी भी मजलिसों में आना जाना रखें, हम फिर भी अल्लाह के मकबूल बंदे बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो वो मुराद ही नहीं है। नहीं भाई, ये तो सिर्फ एक आयत है ना, बाकी कुरान और हदीस राइट, उसके अंदर भी तो इन सारी चीजों की ममानियत आई है ना, उनकी ममानियत के साथ तो कोई भी बंदा अल्लाह का मकबूल नहीं बन सकता, चाहे इस आयत की तफसीर जो है वो झूठी गवाही ही क्यों ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स के मुतालिक साबित हो जाए कि उसने झूठी शहादत दी है तो उसको 40 कोड़ों की सजा दी जाएगी और उसका मुंह काला करके बाजार में फिराया जाए और रुसवा किया जाए, फिर तवील जमाने तक कैद में रखा जाए। यानी ताजीरी सजा जिसको कहते हैं, वो ऐसे शख्स को जिसने झूठी गवाही दी है वो दी जाएगी, और चूंकि झूठी गवाही देने से से मुआशरे के अंदर ना फसाद, बहुत बड़े दर्जे का फसाद फैलता है, ठीक है ना। तो आजकल अदालतों में झूठी गवाही तो आम बात है, तो आप अजीब किस्म का जुमला क्यों लिखते हैं, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, लेकिन आजकल अदालतों में तो चले आज अब हलाल कर देते हैं उसको, क्या 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 ये कहना चाह रहे हैं, हाँ मतलब बातें करने की जरूरत नहीं है ना, अगर उसका कोई फायदा और मकसद ना हो, हलाल करवाना चाह रहे हैं आप, इसमें हलाल कर दूँ उसको, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, ठीक है। तो भाई फसाद भी नजर नहीं आता दुनिया के अंदर, किस किस्म के फसाद है, ठीक है, और हमारे मुल्कों में बजाय और भी ज्यादा फसाद है ना। उनके यहाँ जो है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके यहाँ भी झूठी गवाहियां होती हैं, लेकिन वो उन्होंने ऐसा ढका छुपा किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि छोटे लेवल के ऊपर ना वो उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। तो लोग समझते हैं बड़ा अच्छा निज़ाम है उनके यहाँ जी, बड़ा इंसाफ मिल जाता है और बड़ा जो है वो अदालत के अंदर जल्दी फैसला हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो छोटे लेवल के मामलात में होता है, ठीक है ना। उनके यहाँ जो करप्शन होती है ना, वो छोटी करप्शन नहीं होती, बहुत बड़ी करप्शन होती है, राइट, यानी बहुत हाई लेवल, बिलियंस एंड मिलियंस की करप्शन होती है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जी मीडिया भी उनके कंट्रोल में होता है, राइट, और उनके जो है वो पॉलिटिशियंस भी उनकी जेब में होते हैं, तो उनकी करप्शन जब सामने आती है तो बस चंद दिन जरा उनकी जरा ले दे होती है और फिर बात खत्म हो जाती है। तो लोग समझते हैं कि जी उनका पूरा का पूरा सिस्टम बड़ा जबरदस्त चल रहा है और हमारा सिस्टम, अब हमारा तो बिल्कुल ही ऊपर नीचे सब सारे के सारे ना, हमने तो हमारे यहाँ तो मामला ये हुआ है कि ऊपर वाले भी वैसे ही, नीचे वाले भी सारे के सारे वैसे, तो नीचे भी सारा का सारा वो अदालत के अंदर वही मामला होता है और उनके यहाँ बस इतना सा फर्क है कि नीचे उन्होंने ना चीजों को जरा कंट्रोल करके रखा हुआ है हमें धोखा देने के, ठीक है। क्योंकि वेस्ट जो है ना, ये वेस्ट, ये जो गोरी चमड़ी है ना, गोरी चमड़ी की एक बड़ी खसूसियत है, ठीक है ना, इनकी खसूसियत ये है कि ये उल्लू बनाना बड़ा अच्छा जानते हैं ना, उल्लू बनाने का समझते हैं क्या मतलब होता है ना, उल्लू बनाना, अच्छा उनके कंट्री के अंदर उल्लू जो है ना वो है भी विजडम की निशानी है ना, हमारे यहाँ उल्लू जो है बेवकूफ को कहते हैं, उनके यहाँ उल्लू जो है ना वो अकलमंद को कहते हैं, ठीक है, तो वो अपने अकलमंदी के जरिए से ना हमें बेवकूफ बना रहे होते हैं, उल्लू बना रहे होते हैं, ठीक है। देखो चलो तुम्हारे यहाँ इसको बेवकूफ कहते हैं ना, चलो हम अपने अकलमंद चीज के जरिए से तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसे धोखे देते हैं कि जिससे ना कि हम उनके बारे में कुछ का कुछ समझना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं बड़े ये तो अच्छे लोग हैं यार, बड़े है ना। तो बस ये कब तक उल्लू बनते रहेंगे इस तरह। 11वीं सिफत, वह इजा मर्रू बिल लगवे मर्रू किरामा। टाइम कितना रह गया, तो 11वीं सिफत یعنی اگر لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزر اتفاقاً ہو جائے، بھئی بندہ ہے، انسان ہے، اس نے معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، کبھی چلتے پھرتے وہ ایسی جگہ پہ اس کو یعنی گزر گیا بغیر علم اور ارادے کے، یا واقعی مجبوری، جیسے کہ ابھی آپ نے اوپر فرمایا تھا مجبوری کی وجہ سے، تو مجبوری کی وجہ سے کسی ایسی مجلس کے اندر گزر ہو گیا اس کا، ایسا ہو سکتا ہے نا دنیا کی زندگی کے اندر، تو پھر اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ہاؤ ڈز اٹ یعنی ہینڈل اٹ، فرمایا وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے، یعنی ارادتاً جیسے شریک نہیں ہوتے، اسی طرح اگر کبھی کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جائے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزرے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی دے ڈونٹ اسٹاپ اینڈ انجوائے. ٹھیک ہے نا، اسٹاپ اینڈ اسٹاپ کے ساتھ ساتھ انجوائے کا بھی ورڈ، کیونکہ کبھی قریبی خاندان کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی آپ کو دعوت ملتی ہے کہ جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسے جاتے ہیں کہ وہاں پہ اس محفل کی رونق نہیں بن جاتے، جا کر کے اس کو انجوائے کرنا نہیں شروع ہو جاتے، ہے نا، آگے سے کسی نے الٹی بات کری اور جو ہے وہ ہا 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 ہنسی مذاق کے لیے جو ہے انہوں نے بھی ایک لطیفہ چھوڑا، انہوں نے بھی ایک پھل جڑی چھوڑی، ہے نا، مجلس کو گرمانے کے لیے. نہیں، یہ نہیں کرتے اس طریقے سے، یہ وہاں پر جاتے ہیں مجبوراً، اور یہی ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں بس کب یہاں سے نکلوں، کب یہاں سے پیچھا چھوڑاؤں، یہ ان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر رہتے ہوئے بھی جتنا ان سے ممکن ہو سکتا ہے بے پردگی سے بچتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غیر محرم دو کزنز اور رشتہ دار جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ ملنے کے لیے آ جاتی ہیں، تو بس السلام علیکم، سر جھکا کر کے خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، بس بس ختم بات، کانورسیشن کو طول نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا، نہ عورتوں کے ساتھ کانورسیشن کو طول دیتے ہیں، اور نہ مردوں کے ساتھ بےہودہ قسم کی کوئی کانورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، موسیقی بج رہی ہو تو اس جگہ سے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ موسیقی نہ ہو، یا باہر لاؤنج میں چلے جاتے ہیں، یا باہر لان میں چلے جاتے ہیں جہاں موسیقی نہ ہو، ٹی وی چل رہا ہو ایسی کسی جگہ پہ تو وہاں سے اٹھ کر کے کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ٹی وی کی آواز نہ آ رہی ہو. بھائی دیر آر مینی ویز ٹو اوائڈ دیز تھنگس. بندے کے دل کے اندر ایک تمنا ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ میں ان چیزوں میں نہیں انوالو ہونا چاہتا. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، اور پھر بڑے بھی تو ہے نا، بڑوں سے مشورہ بھی تو کرنا چاہیے نا، پوچھنا بھی تو چاہیے نا کہ اس طرح کی گیدرنگ کے اندر میں کیا کروں. تو پھر وہ ویسے بھی، اور خصوصاً مردوں کے لیے تو پھر بہت آسان ہوتا ہے. اصل تو جو تکلیف ہوتی ہے ایسی مجلسوں کے اندر وہ تو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بندیاں جو نیک بندیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی بچانے کی خاطر وہ کر لیتی ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں. اگرچہ کہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، پردے کے انتظام کے باوجود مکس گیدرنگ ہونے لگتی ہے شادیوں میں، تو اس میں جانا کیسا ہے، اور ان کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. بھائی جب اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں نا، تو پھر جانا تو پڑے گا. تو ابھی جو اتنی دیر سے میں جو کیا بول رہا ہوں بھائی، یہ تو بول رہا ہوں نا کہ جہاں مکس گیدرنگ ہوگی تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں. رائٹ، لان بھی تو ہوتا ہے نا، باہر سڑک بھی تو ہوتی ہے نا ہمارے شہر کے اندر، کیا وہ جو شادی ہالز ہوتے ہیں، تو شادی اور کے باہر سڑک نہیں ہوتی ہے کیا؟ لڑکے کھڑے ہو کر کے وہاں سٹا نہیں لگا رہے ہوتے؟ جن کو سگریٹ پینی ہوتی ہے تو اندر مجبوری ہوتی ہے، سگریٹ نہیں پی سکتے تو باہر نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں؟ گپے لگانے کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں؟ تو ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، سگریٹ پینے کے لیے تو باہر نکل سکتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. وہاں پہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ فارمیلٹی سامنے آ جاتی. رائٹ، تو کیا کہاں بہانے بنائیں گے، کہاں بہانے، کہاں کب تک بہانے بناتے رہیں گے، ہے نا، نہیں ہیں یہ بہانے نا. تو سنجیدہ ہو جائے، بس سیدھی سی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں، سنجیدہ ہو جائے تو سب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں تو جتنا دین ہے اتنا تو کہیں اور دین نہیں، دنیا میں کہیں اتنا دین نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر. तो वहां पर दीन पे चलना कोई कहे नहीं जी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए दीन पर चलना, तो दिल तो ये चाहता है कि लगाएं कि जरा खींच करके उसको ना, ठीक है देखो तो जरा अपने चारों तरफ लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है तुम्हारे। ठीक है 11वीं सिफत फिर बताया कि मतलब ये कि ऐसी मजलिसों में ये लोग जिस तरह बकसद व इरादा शरीक नहीं होते, इसी तरह अगर कहीं इत्तेफाकी तौर पर उनका किसी ऐसी मजलिस पर गुजर हो जाए तो इस फिस्क फजूर और गुनाह की मजलिस पर से शराफत के साथ गुजरे चले जाते हैं, यानी उनके इस फेल को बुरा और काबिल नफरत जानते हुए ना गुनाहों में मुबतला लोगों की तहकीर करते हैं। ठीक है ना, यानी इनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि उन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, क्योंकि बुरा भला कहने से वही बुराई पड़ती है सारी, बस ये अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को निकाल देते हैं वहां से, और ना खुद अपने आप को उनसे अफजल और बेहतर समझकर तकब्बुर में मुबतला होते हैं। जैसे पिछली क्लास में बात हो चुकी है ना कि टीचर जो ये बातें कर रहा होता है वो स्टूडेंट की जहन साजी के लिए कर रहा होता है, ताकि उनके दिल से इन चीजों की अजमत खत्म हो, नफरत पैदा हो। तो टीचर के लिए बातें करना जायज होता है, स्टूडेंट के लिए बातें करना जायज नहीं होता कि वो अब लोगों को जो है ना वो बुरा भला कहना शुरू कर दे, हकीर जानना शुरू कर दे और अपने आप को अफजल जानना शुरू कर दे, ये स्टूडेंट के लिए जायज नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो रिसीविंग एंड के ऊपर है और टीचर गिविंग एंड के ऊपर है, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान फर्क भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है कि ये अपने आप को अफजल और बेहतर नहीं समझते, टीचर तो टीचर बनता ही उस वक्त है जब वो अपने आप को अफजल और बेहतर समझना छोड़ दे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो अभी एक लंबा रास्ता होता है ना तय करने का, वो अपने अपनी मैं को मिटाना, उसके लिए अपने आप को जो है वो सबसे कमजोर समझना, सबसे यानी हकीर समझना, एक लंबा उसके लिए अभी एक मेहनत होती है उसके लिए, इस वजह से बात की जा रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला का इत्तेफाक से एक रोज किसी बेहूदा लग़ मजलिस पर गुजर हो गया तो वहां ठहरे नहीं गुजरे चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ तो फरमाया कि इब्ने मसूद करीम हो गए, और ये आयत तिलावत फरमाई जिसमें बेहूदा मजलिस से करीमों शरीफों की तरह गुजर जाने का हुक्म है। ठीक है, करीम का मतलब इज्जतदार जिसको कहते हैं ना। ठीक है, तो सहाबा को भी भाई हमें क्या, सहाबा को इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ जाती थी। ठीक है, तो हमें उनकी सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई अगर सवाल है तो कर लें, वरना टाइम तो हो गया है, तो इस वजह से बाकी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी यानी अगली जो सिफत है वो है भी जरा इतनी दीनदारों के लिए खसूस अच्छी खासी टेक्निकल किस्म की ये सिफत है, तो वो इंशाल्लाह अगली ही क्लास में पूरी पड़े तो बेहतर होगा। ट्विटर यूज करना कैसा है, क्या जवाब दें भाई इनको? कहेंगे जी मौलाना तकी उस्मानी साहब भी ट्विटर इस्तेमाल करते, तब मैं उनको क्या कहूँ, हराम कहूंगी, ट्विटर इस्तेमाल करना हराम है। देखें सवाल जो है ना वो आपका सवाल ही गलत है। ठीक है, आपका सवाल क्या होना चाहिए, मेरे लिए ट्विटर यूज करना कैसा है? ठीक है, क्योंकि जब ट्विटर मौलाना तभी उस्मानी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है वो माशाल्लाह एक से एक मुफ्तीज और एक से एक जो है वो सबको ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अब इसके ऊपर ये सवाल करना, तो आप यानी आपका ये सवाल जो है ना आपकी इंशाल्लाह नीयत ऐसी नहीं होगी, मुझे पता है आपकी नीयत ऐसी नहीं है, लेकिन आपके इस सवाल को जो है ना फसादी सवाल कहा जा सकता है। फसादी सवाल, व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्यों किस नीयत से ये सवाल कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है मौलाना तकी उस्मानी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, तो अब इसके ऊपर ये सवाल करना ये फितने वाला सवाल है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है आपकी ये नीयत है, बिकॉज मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, इस वजह से आपकी नीयत ये है नहीं, लेकिन ये सही सवाल नहीं, कम अज कम फितने वाला चने सवाल नहीं कहेंगे क्योंकि आप, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि सवाल गलत है। ठीक है, क्योंकि सवाल ये होना चाहिए था मेरे लिए ट्विटर इस्तेमाल करना कैसे। ठीक है, अब इसके ऊपर जवाब ये होगा कि आप जिस लेवल पर हैं, ठीक है ना, आप जिस उम्र में हैं और आपकी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिन चीजों में आपको मेहनत करने की भी जरूरत है, आपके लिए ट्विटर इस्तेमाल करना सही नहीं। ठीक है, तो सवाल करना भी जो है ना वो भी एक। ठीक है, और किसी को कोई सवाल हो? चले, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।